ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जब भी हम किसी से कोई सीक्रेट शेयर करते हैं तो हम उसे हमेशा कहते हैं कि ये बात किसी और से नहीं कहना, लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि वो सीक्रेट कभी भी सीक्रेट नहीं रहता बल्कि जग जाहिर हो जाता है। लेकिन कई बातें अभी भी हैं जो हमारी हमसे ही छुपी हैं, और इस दुनिया की कई बातें हैं जो हम नहीं जानते, और अगर देखें तो परमात्मा के भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। तो हमारी ये नई श्रृंखला गॉड्स रिवेलेशंस, इसमें बहुत कुछ ऐसा ही होना है जो मुझसे जुड़ा है, ये रहस्य जो आज तक मुझे नहीं मालूम था, परमात्मा का जो परिचय है उसका रहस्य, और उसके अलावा मेरी पूरी हिस्ट्री, मेरी पूरी जर्नी और ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि चक्र, ये क्या है, ये सारे रहस्य हमारे इस श्रृंखला में जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं उसमें होंगे। और ये रहस्य उजागर कौन कर रहा है, कौन है ये जो सीक्रेट्स हमारे सामने रिवील करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
इट्स क्वाइट एक्साइटिंग गॉड्स रिवेलेशंस, इसमें क्या होना है सिस्टर शिवानी, क्या गॉड रिवील होगा या गॉड की बात रिवील होगी, क्या होगा?
दोनों चीजें होंगी। सी, उस नाम में ही सारा स्पष्ट है, क्योंकि पहले गॉड रिवील होगा और फिर गॉड जो रिवील होगा तो वो गॉड क्या रिवील करेगा वो होगा। एक है परमात्मा को जाने और फिर परमात्मा ने जो जो बताया फिर उसको जाने, तो दोनों बातें अब हमारे सामने धीरे धीरे प्रत्यक्ष होनी है, क्योंकि ये समय की पुकार है। हर चीज समय अनुसार होती है, और जब समय पर वो चीज मिलती है तो जैसे आपने कहा जीवन एक अलग मोड़ ले लेती है। तो इट इज नाउ टाइम टू नो हिम, बिकॉज इफ वी सी द प्रेजेंट टाइम वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द पावर्स, चाहे वो पॉलिटिकल पावर है, चाहे वो रिलीजन की पावर है, चाहे वो साइंस की पावर है, चाहे वो फाइनेंस की पावर है, सब शक्तियों को हम देख रहे हैं, और फिर भी हम अपनी दुनिया की हालत देख रहे हैं कि सब कुछ करते हुए, सारी मेहनत, सारे प्रयास, सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, यूनिवर्सल लेवल पे भी करते हुए हम अब इस दुनिया को थमा नहीं पा रहे हैं, और या दुनिया को तो क्या कहें, हम अपने जीवन को भी नहीं थमा पा रहे हैं। वी लुकिंग फॉर समथिंग एंड इफ यू सी एवरीवन सीम्स टू बी सर्चिंग, खोज है, और कहीं ना कहीं हमें ये बताया गया था कि यू हैव टू गो ऑन सर्चिंग, यू नो, चाहे परमात्मा का है तो परमात्मा की खोज जीवन का लक्ष्य बन गया था। लुकिंग फॉर पीस, फाइंडिंग लव, फाइंडिंग पीस, कीप सर्चिंग फॉर इट।
एंड एक और सबसे बड़ी सर्च जो हुए माए
हुए माए,
ये इतनी बुक्स, इतना कुछ लिखा जा चुका, लेकिन फिर भी हर बार बात यही आती है, द एंड ऑफ एवरी बुक इज रिटन It's difficult.
And in fact, it said this is the purpose of life.
Yes,
you know, इस खोज में लगे रहो, और सबने यही समझा कि जीवन का लक्ष्य ही है ढूंढते रहना। Now we need to stop and ask ourselves, क्या हमेशा ढूंढते ही रहेंगे, और जन्मों से ढूंढते आ रहे हैं, क्या ये सर्च कभी खत्म नहीं होगी? Is our life only about searching, or is it that this search will end? तो ये सीरीज का, या ये कहें आने वाले कुछ दिनों में, दिस इज द होल पर्पस, कि ये जो हमारी खोज है, ये जो सर्च है अपने को जानने की, उसको जानने की, और अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों की, द सर्च एंड्स, बिकॉज जिसको ढूंढ रहे थे वो आ चुका है। तो जब वो खुद आ चुका है तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब तो एक शुरुआत है। यू नो, द सर्च फिनिशेस एंड द रिलेशनशिप बिगिन्स। आज दिन तक परमात्मा को ढूंढ रहे थे, यू नो, इट्स लाइक अ चाइल्ड जो अपने पेरेंट को ढूंढ रहा था, पेरेंट से बच्चा बिछड़ गया था बचपन में, लेट्स से ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, कब तक ढूंढता रहेगा? तो एक है अपने आप को देखें, एक बच्चा जो अपने आप को ही भूल चुका है, पहले तो हम अपने आप को भूल चुके हैं और अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं, अपने घर से बिछड़ चुके हैं, तीन चीजें हमें नहीं मालूम थी, हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं और हम कहाँ के रहने वाले हैं, तीनों आंसर हमें नहीं मालूम। तो अब आप सोचो, अगर एक बच्चा मार्केट में, मेले में बिछड़ गया है, कोई उससे पूछे कौन है, मालूम नहीं, कहाँ के रहने वाले हो, मालूम नहीं, किसके बच्चे हो, मालूम नहीं, तो अगर वो हमें पहुंचाना भी चाहते ठिकाने पर तो पहुंचा नहीं पाएंगे, आंसर्स ही नहीं थे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सभी भटक रहे थे, यू नो, ऑल ऑफ अस वर लुकिंग फॉर क्वेश्चंस टू दीज थ्री आंसर्स। अब सोचो वो बच्चे को ये तीन आंसर्स मिल जाएं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको वो ढूंढ रहा था वो उसको मिल जाए, अब क्या फर्क होगा? एक है ढूंढना और एक है मिल गया उसके बाद का जीवन। तो अब ये टाइम आ चुका है, वो समय आ चुका है, ढूंढने का काम फिनिश्ड, अब वो आ चुका है, अब हम उससे मिले। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिलने के बाद एक बहुत सुंदर प्यारा सा रिश्ता, जैसे द चाइल्ड स्टार्ट्स लिविंग विद द पेरेंट, एक है द चाइल्ड लुकिंग फॉर द पेरेंट एंड नाउ द चाइल्ड स्टार्ट्स लिविंग विद द पेरेंट, तो वो जीवन कैसे होगी।
तो इस पूरी जर्नी में जो सर्टेनली आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, कि ये जो हमने, हम जो ढूंढ रहे थे, हम इस टाइम पे आके तो हम ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन हम इतने इनग्रॉस्ड हैं अपनी लाइफ में भी। आई वॉज जस्ट विजुअलाइजिंग कि अगर गॉड के साथ मैं रहने लग जाऊं, यू नो, तो क्या मेरी ये सारी चीजें खत्म होंगी? क्या मेरे साथ सिर्फ वो रिश्ता होगा और ये खत्म होगा, या क्या होगा वो अगर रिश्ता बनता है, और उसके बाद का जीवन एक्चुअली होगा क्या? ये सब छूटेगा, ठीक है, जिसको मैं, जो मेरी अब जिंदगी बन गई है, जो एक विशेष सर्कल है, लेकिन मेरी खुशी, मेरा सुख, मेरा दुख इसी में ही है जो मैंने अभी बनाया, क्योंकि उसको ढूंढते ढूंढते वो तो नहीं मिला। फिर मैंने किसी सदगुरु के साथ अपने आप को जोड़ा है जो मुझे काफी कुछ यू नो एनर्जी देते हैं, अच्छा फील कराते हैं। तो अब सडनली अगर ये रिवील होगा और मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगी, तो फिर क्या होगा?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो ये विशेष साइकिल नहीं है, ये हमारा जीवन है, लेकिन क्योंकि हम उसमें उतनी खुशी या उतना सुख, उतना आराम नहीं अनुभव कर रहे, तो इट्स नॉट वेरी इंजॉयबल नाउ डेज, इट्स बिकम मोर ऑफ स्ट्रगल या मोर ऑफ एफर्ट, मेहनत है, मेहनत है, और चेहरों पर मेहनत दिखाई देती है, तो इसीलिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है खुश रहने के लिए, बिकॉज खुशी हमारी निरंतर नहीं है, स्थायी नहीं है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन को आज देखें तो क्वालिटी क्या है, एक तो मेरी पर्सनल क्वालिटी क्या है, फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ की क्वालिटी क्या है, मेरी फैमिली लाइफ की क्वालिटी क्या है, मेरे रिलेशनशिप्स में कहां है, इज देयर एनीथिंग आई वांट टू चेंज, यू नो, लेट्स टेक अ मिनट एंड आस्क आवरसेल्फ्स, अगर मुझे अपने जीवन में कुछ बदलना चाहे आज, इज देयर एनीथिंग आई वांट टू चेंज और इज एवरीथिंग गोइंग द परफेक्ट वे, तो हमारे पास बहुत कुछ आएगा चेंज करने के लिए, है ना। रिश्तों में कहीं दूरियां आ रही हैं, उन्हें हमें वापस वो स्मूथ बनाना है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो स्मूथ हो सकते हैं, वो बहुत प्यारे रिश्ते हैं, लेकिन अननेसेसरी छोटी छोटी बातें, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, हम दूर होते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ हम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आज टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन नॉर्मल शब्द बन चुके हैं, एंड हमने उनको स्वीकार कर लिया, उन्हीं के साथ अपने जीवन को चलाते गए। अपनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, दर्द तो होगा ही, हर्ट तो है ही, सो वी आर डूइंग एवरीथिंग, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो होना चाहिए, जिस क्वालिटी से वो होना चाहिए, वो मिसिंग है। यू नो, कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फन फैक्टर है, जो इंजॉयमेंट फैक्टर है, जो उसमें हार्मनी चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, वो नहीं है, उसके लिए कोई शक्ति चाहिए। यू नो, इट्स लाइक फिजिकल बॉडी, अगर आज हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं, हम सारे काम करते हैं फिर भी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम घर बैठ जाएं और रेस्ट करें, तो हम अपने आप को उठाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वो भी एक दिन है काम करने का। और एक है जब हम फिजिकली बहुत हेल्दी हैं, हमारा स्टैमिना बहुत हाई है, और उस दिन भी हम वही काम करते हैं। दोनों में फर्क होगा ना, जब हम कमजोर फील कर रहे हैं, हम लिटरली अपने आप को ड्रैग करेंगे, दर्द हो रहा होगा, कमजोरी लग रही होगी, करते जाएंगे करते जाएंगे, उस दिन भी काम होंगे, उस दिन भी होंगे। और एक है जब एनर्जी लेवल बहुत हाई है फिजिकली, एंड बॉडी ना बहुत अच्छा फील कर रही है, उस दिन भी काम करेंगे, दोनों में फर्क। इसी तरह यहां मैं आत्मा, उसकी एनर्जी, आज हम लो हैं, गुस्सा, चिंता, दर्द स्वीकार कर लिया, फिर भी काम कर रहे हैं, रिश्ते भी निभा रहे हैं, समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और एक है आत्मा खुश, एनर्जेटिक, लवफुल, प्योर, पावरफुल, और फिर वो जीवन जी रही है, वो ही रिश्ते निभा रही है, वो ही काम कर रही है, Will there be any difference? तो ये जो मैं हूं, ये सब कुछ जो आपने कहा करने वाली, मैं अपने आप को कैसे पावरफुल कर लूं, ताकि मैं वही चीजें, वही बच्चे, वही हस्बैंड, वही बॉस, लेकिन उन सारी चीजों को बहुत सुंदर बना लूं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं जैसा भाग्य चाहूं वैसा अपना भाग्य बना लूं। आई स्टार्ट चूजिंग एंड क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। जब आत्मा की शक्ति आए, द सोल, जब मेरी शक्ति कम होती है, मैं डिपेंड होना शुरू कर देती हूँ, यहां तक कि मेरे मूड के लिए भी आज मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप कुछ अच्छा बोलो आई फील गुड, नहीं बोलो, वी हैव रीच्ड दैट लेवल ऑफ डिपेंडेंसी कि मैं जैसा फील करूँ आई एम डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी। तो जितना जीवन हमारी डिपेंडेंसी की होगी हम अच्छा नहीं फील कर सकते, क्योंकि हमेशा हम किसी न किसी और पर निर्भर हैं। हम अपने भाग्य के लिए भी बहुत लोगों पर निर्भर थे, हमने सोचा परिस्थितियों के अनुसार हमारा भाग्य, हमारे प्लैनेट्स के अनुसार हमारा भाग्य, या कोई हमारे ऊपर कुछ कर ना रहा हो तो वो हमारा भाग्य बिगाड़ रहा है। एंड फिर कई बार ये भी सुना कि पढ़ा कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में तो है ही नहीं, वो लिखता है। तो लिटरली देयर वाज नथिंग इन माय कंट्रोल, यू नो, सो दिस इज अ फीलिंग ऑफ अ विक्टिम, जिसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, उसकी जीवन टोटली कोई और शक्तियों पर डिपेंडेंट है। अब उनकी मर्जी, वो जैसा हमें चलाए हम चले, ये अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जो कमजोर होता है वो हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट होता है। नाउ इज द टाइम टू बिकम स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट। देखो आज यूथ है, आज वुमेन है, कहते हैं हमें डिपेंडेंसी की जीवन नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट। सिमिलरली नाउ इट्स टाइम फॉर द सोल टू बिकम स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होंगे भाग्य खुद बनाएंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चूज करेंगे और जैसा चाहिए वैसा बनाते जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रांग बनने के लिए जो पावर चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि अभी जितनी पावर्स हैं वो तो हमारा काम नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ एक ही पावर है जिसको यूज नहीं किया है। हमने रिलीजन की पावर को यूज किया, साइंस को यूज किया, पैसे को यूज किया, हमने सोचा धन से हमें मिल जाएगा, रिश्ते बन जाएंगे, वी थॉट मनी कुड डू एवरीथिंग, मनी कैन गिव मी हैप्पीनेस, मनी कैन गेट मी पीपल, मनी कैन गेट मी हेल्थ, बट वी सॉ इट्स नॉट वर्किंग। तो हमने सारी पावर्स ट्राई कर ली है, एक पावर अब बची है एंड दैट इज गॉड्स पावर। परमात्मा को याद करना, मानना, उसमें बिलीव करना, वो तो ठीक एक बात है, लेकिन उसकी शक्तियों को समझना, जानना, अपना बनाना और फिर अपने जीवन में गॉड्स पावर को यूज करना, जब हम वो करना शुरू कर देंगे लाइफ विल बिकम समथिंग
एल्स। आज के वक्त में हम यूजुअली क्या कहते हैं कि मेरे पास अगर पैसा है तो हेल्थ नहीं है, ठीक है, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास हर तरह की पावर हो तब हम खुश रह सकते हैं। तो वो हर तरह की पावर तो हमें मिल नहीं सकती है, दिस ऑल्सो वी नो। मेरे को आपसे ये पूछना है कि ये जो आपने कहा कि परमात्मा की शक्ति मेरी शक्ति बनती है, तो फिर मुझे और कोई पावर नहीं चाहिए होगी?
और सब पावर्स तो अपने आप मेरे पास आ जाएंगे, कौन सी पावर मुझे चाहिए? इमोशनल पावर, पॉलिटिकल पावर, अपने ऊपर, मुझे पहले अपने पर राज्य करने की शक्ति चाहिए। आई नीड टू फर्स्ट रूल ओवर माई सेल्फ, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, माई वर्ल्ड इज हियर। आज मेरा अपने पर राज्य नहीं है। आज अगर हम अपने आप को सारा दिन में देखें, क्या हमारा मन हमारे अनुसार चलता है? तो उसके लिए तो सीधा हम कह देंगे नहीं, माई थॉट्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। कई बार तो हमारा मुख भी हमारे अनुसार नहीं, हम कहेंगे सॉरी मेरे मुंह से ना बात निकल गई। Imagine to even say this, you know, if I have to say this to you, कि sorry मैं बोलना नहीं चाहती थी, मेरे मुंह से बात निकल गई, it actually means I'm saying to you कि मेरा अपने ऊपर control नहीं है। और फिर आज सिर्फ मुंह से नहीं बात निकलती, आज हाथ से भी कुछ उठ जाता है, लग जाता है, हम कहते सॉरी ऐसे ही उठ गया। सो वी आर एक्चुअली लूजिंग अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर आर सेल्फ। तो रूलिंग पावर येस, बट रूलिंग ओवर आर सेल्फ। लेकिन जब हर आत्मा इस तरह से अपने ऊपर रूल करना शुरू कर देगी, तो फिर समाज कैसा हो जाएगा, देश कैसा हो जाएगा? यू नो टूडे इट्स वेरी इजी टू से उनको बताओ, यू नो, हम लोग जितने भी लोगों से मिलते हैं कहते हैं आप उनको बताओ जो देश को चलाते हैं, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। विच इज एन इल्यूशन, बिकॉज वी डोंट, यू नो, वाई आर वी ब्लेमिंग समबडी? हम सब समाज को बनाते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो हम एक एक आत्मा, हम समाज को बना रहे हैं। हम सब अपने अपने लेवल पर अपनी कमजोरियों के साथ हैं। अगर हम सब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, together we are in the process of creating a new world. But by creating first a new world here and then creating a new world there, definitely sari powers hongi, lekin most important meri dependency कम होती जाएगी। आज हम डिपेंडेंट हैं, चाहे वो साइंस पे है,
बिल्कुल साइंस की पावर हो, मनी की पावर हो, तब तो मैं ये काम कर सकता हूँ, हेल्थ की, सी ऑल द थिंग्स,
एब्सोल्युटली,
एंड देन आई लुक फॉर इट बिकॉज ये चाहिए। पर मुझे ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि वो पावर आप उसको यूज करते हैं अपने जीवन में, तो ये जो बाकी पावर है, साइंस की पावर है, वो मेरे पास अगर नहीं है तो तब मैं कैसे उस शक्ति को भी यूज कर सकता हूँ? सपोज पैसे की पावर नहीं है मेरे पास, सपोज हेल्थ की पावर नहीं है, देन हाउ कैन दिस पावर कंपनसेट फॉर द अदर पावर?
सी, जो ये पावर हमें मिलेगी, ये पावर मतलब कि गॉड परमात्मा की पावर को लेकर हम आत्मा की पावर को इमर्ज करेंगे, विच मीन्स आई द सोल बिकम पावरफुल। जैसे मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाती हूँ, मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज, एक्चुअली हम अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। आज दिन तक हम अपने को देखते थे तो वी जस्ट थॉट आई एम द बॉडी, या नाम, या रिलीजन, प्रोफेशन, रिश्ते, कास्ट, नेशनैलिटी, मैं कौन, मैं इंडियन, मैं हिंदू, मैं डॉक्टर, मैं मदर, यू नो, इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस। तो जो सबसे पहला सीक्रेट परमात्मा आकर हमें बताते वो है कि ये आप नहीं हो, ये सब कुछ आपका है, ये शरीर भी आपका है, और ये सब कुछ तो जो आपने अक्वायर किया वो तो आपका है, लेकिन अपने को ही भूल गए। यू नो, जो कुछ ओढ़ा, जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ बनाया, उसको मैं समझ लिया, तो अपने को भूल गए तो अपनी शक्ति को यूज कैसे करेंगे? इफ आई फॉरगेट हु आई एम एंड इफ आई फॉरगेट व्हाट पावर आई हैव, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इवन यूजिंग दैट पावर। तो सबसे पहले अपने को पहचानना कि आई एम एनर्जी, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, स्पिरिट, व्हाटएवर, आई एम दैट एनर्जी जो यहाँ इस पूरे शरीर को चलाती है, जिसको हम मन कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, संस्कार, ये सारी शक्तियां जो सारा दिन काम करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सीक्रेट जो रिवील हुआ वो ये कि मैं आत्मा ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत प्योर हो, लवफुल हो, पीसफुल हो और पावरफुल हो। आज दिन तक हम सोचते थे मैं गुस्से वाली हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं हर्ट जल्दी होती हूँ, मैं सेंसिटिव बहुत हूँ। वी थॉट दैट वॉज माई नेचर, यू नो, वी डिडंट नो आवर ओरिजिनल नेचर। जब तक अपनी ओरिजिनल नेचर को नहीं जानते थे, हम नहीं यूज कर सकते थे। सहन मेरे से नहीं होता, डिसीशन मेरे से नहीं लिया जाता, दीज वर माई पावर्स, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिसाइड, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, सामना करने की, ये हम हमारी शक्तियां थी, याद नहीं थी। तो परमात्मा ने सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया कि तुम आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, प्यार, खुशी, पवित्रता, जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हारी अपनी क्वालिटी है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, तुम्हारी अपनी शक्तियां हैं। नाउ वंस वो हमें ये याद दिलाता है, देन ही टीचेस अस टू हाउ टू यूज देम, ज्ञान देकर हमें सिखाता है कि कैसे इसको यूज करना है। जो आत्मा ये यूज करना शुरू कर देगी, अब आप इन शक्तियों को अपने काम पे यूज करना शुरू कर दो। सो सपोज यू आर अ प्रोफेशनल और अब आपके अंदर ऑनेस्टी भी आ गई, वैल्यूज भी आ गए, पावर्स भी आ गए, तो क्या आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा? इज इट नॉट गोइंग टू बी बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर?
लेकिन यू आर ट्राइंग टू से कि आज के वक्त में अगर मैं डिसऑनेस्ट से सडनली ऑनेस्ट हो जाऊं और सिंसियर हो जाऊं और वैल्यूज ले आऊं, तो आज हम ये कहते हैं कि फिर मैं इस दुनिया में चल ही नहीं सकता।
हम ये कहते हैं क्योंकि हमने एक कभी चल के देखा नहीं और दूसरा हमारे पास चलने की ताकत ही नहीं थी। वी रियली, बिकॉज हम बहुत जल्दी जो हमारा प्रेशर्स था बाहर, हम सकम करते हैं क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है। उसका हमें कॉस्ट क्या भरना पड़ा कि हमें पैसा तो बहुत आ गया हमारे पास, वी ऑल हैव एवरीथिंग आउटसाइड, वी गॉट इट एट अ कॉस्ट, क्योंकि हर स्टेप पर कमाते समय हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए, और कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ किए? यहाँ किए, वैल्यूज पर, किसी को गिराया, आगे गए किसी और गलत तरह से गए, झूठ बोले, गलत तरह से धन कमाया, या और गलत नहीं भी किया, तनाव से गुजरे, गुस्सा किया हर समय काम करते समय, एंग्जाइटी हुई, फियर हुआ, ये सब तरीके अपनाते अपनाते धन तो आ गया, बड़े बड़े मकान बन गए, दो दो गाड़ियां बाहर खड़ी है, जो कुछ खरीद सकता था पैसा सब कुछ खरीद लिया। इन दिस जर्नी क्या क्या गवा दिया? अपनी खुशी गवा दी, रिश्तों में एक दूसरे से दूर हो गए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ भी अफेक्ट हो गई, ये सारा कुछ हो गया।
कंटिन्यूस फियर है,
खुशी है ही नहीं ना, खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब हम, जो आपने कहा कि ये वैल्यूज को यूज करके अगर हम अब काम करते हैं, तो हमें अब दो चीजें मिलती हैं और हर रोज हम दो चीजें कमा के घर आते हैं। आजकल हम एक चीज कमा के घर आते हैं, दैट इज मनी। वी गेट मनी होम एवरी डे एंड हम पैसा आकर परिवार को भी पकड़ाते हैं एंड हम कहते हैं खुश रहो। यू नो, हम टेंशन कैरी करके आएंगे लेकिन वी विल गिव देम मनी एंड वी विल से बी हैप्पी एंड वी आर सैटिस्फाइड थिंकिंग के आई हैव डन व्हाट आई हैव टू डू टू मेक देम हैप्पी। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज पर चलते हुए खुशी और प्यार के साथ सारा दिन उस धन को कमाएंगे, तो फिर हम रोज शाम को घर क्या लेकर आएंगे? हम पैसे भी लेकर आएंगे, प्रॉफिट भी लेकर आएंगे, प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आएंगे, लेकिन हम साथ साथ खुशी लेकर आएंगे, विल पावर लेकर आएंगे, वैल्यूज लेकर आएंगे। मतलब हम खुद स्ट्रांग होकर आएंगे, हमारे रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा शिफ्ट करने के लिए और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए द सोल नीड्स पावर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। योर रिलेशनशिप्स बिकम एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल जब आत्मा में वो ताकत भरने लग जाती है। सो दैट्स द पावर नीडेड नाउ, क्योंकि ये पावर अगर अपने अंदर अब नहीं भरी तो दिन ब दिन अगर चार्जिंग नहीं होगी तो फिर डिस्चार्जिंग हो रही है। यू नो, डे बाई डे वी कैन सी कि हमारी डिस्चार्जिंग हो रही है। उसका इफेक्ट डिस्चार्जिंग फिजिकल हेल्थ में भी दिख रही है, रिलेशनशिप्स में भी दिख रही है। और कितना डिस्चार्ज होंगे, वी नीड टू आस्क। Let's start charging. So it's time for the battery to now connect to the powerhouse.
And how many revelations, what kind of revelations are going to be there in this series? Kya kuch hone wala hai?
Actually, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे, मन में प्रश्न भी उठते थे। I think most of us had questions, लेकिन हमें answers नहीं मिले। And फिर कहीं ना कहीं ये भी हमें बताया गया कि भावना से चलो, question नहीं करो ज्यादा। भावना में लॉजिक नहीं यूज करनी चाहिए, फेथ से सब कुछ हो जाता है। तो फेथ अच्छा था, लेकिन फेथ बिना अंडरस्टैंडिंग के था। यू नो, फेथ यस इज नीडेड, बट फेथ विद अंडरस्टैंडिंग वी कैन डू मैजिक। लेकिन फेथ विद लिटिल यू नो क्वेश्चंस, हमें फिर हम उसको राइट तरह से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं कौन वो नहीं पता था, परमात्मा कौन वो तो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि परमात्मा के नाम पे तो हम आज एक दूसरे से युद्ध भी करने के लिए रेडी हैं, इतना उसकी आइडेंटिटी और एंटिटी पे क्वेश्चन मार्क हो चुके हैं। हमारा भाग्य कौन लिखता है? हमेशा ऑलवेज डिपेंडेंट कि परमात्मा हमारा भाग्य लिखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आए तो परमात्मा से ही नाराज हो गए। दुनिया को देखा और फिर हमने कहा ये भगवान की दुनिया ऐसे चलती है। फिर हमने गीत भी बनाए कि हे भगवान देख तेरी दुनिया की हालत क्या हो चुकी है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भगवान अगर दुनिया को चला रहा होता तो ऐसी दुनिया की तो हालत ही ना होती। तो हमारा भाग्य कौन बनाता है, कौन लिखता है हमारा भाग्य? मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमात्मा का क्या रोल है? वी रियली आर नॉट वेरी क्लियर कि परमात्मा कौन है, परमात्मा हमें क्यों चाहिए। What is God going to do? अगर हम कहें कि वो है भी और आ भी चुका है, What am I supposed to do with Him? और उसका मेरे जीवन में क्या रोल है, कौन सी शक्ति वो हमें देता है, क्या वो करता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं करता है। बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने सोचा परमात्मा सब कुछ करता है, भगवान ही सब कुछ करता है। तो क्या भगवान मिरेकल्स करता है, या भगवान हमें कुछ ऐसा सिखा देता है जिससे खुद हम अपने जीवन में मिरेकल्स करना शुरू कर दें? वो तरीके हमें सीखने हैं। एंड इस ईयर के साथ बहुत सारा डर जुड़ा हुआ है, 2012, तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी है कि शायद कुछ होने वाला है, एंड जो होने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन परमात्मा का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है समय को लेकर, कि परमात्मा ने आकर बताया कि ये वो जो समय है, ये समय विनाश का नहीं, ये समय परिवर्तन का है। ये समय है एक नई सोच, एक नई समझ और एक नए जीवन जीने के तरीके को सीखने का है, जिससे हम एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। इट्स अ ईयर ऑफ नाउ एम्पावरमेंट, transformation and an absolutely new way of living. So 2012 is going to be the turning point, but a turning point in a very, very beautiful way. Mm-hmm.
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवा से रोशन जमी आसमा, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी परदा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है।
शिवानी, महाशिवरात्रि का पर्व बस कुछ ही दिनों बाद है और सारी तैयारियां घर बाहर होने शुरू हो जाती हैं। हम जाते हैं मंदिरों में, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत सारे और अक के फूल चढ़ाते हैं, कई सारी और चीजें होती हैं, व्रत रखते हैं। एक बात जो एकदम से मन में आती है वो ये कि शिवलिंग एक प्रतिमा है, प्रतिमा कोई रूप नहीं है उसका, शिवलिंग है, काले से पत्थर का बना होता है। दूसरी तरफ जब हम शिव की बात करते हैं तो शंकर की प्रतिमा आती है। ज्यादातर हम में से लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन फिर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही जो हैं ये शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, पर सचमुच में क्या है इसका जो अर्थ है?
जब भी किसी से भी मिलना होता है तो बहुत प्यार से कहते हैं हम शिव जी को मानते हैं, है ना। और क्योंकि बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम्स भी जो देख रहे हैं और हम बार बार बात करते हैं निराकार परमात्मा शिव की, तो कहते हैं आप भी शिव जी को मानते हैं, हम भी शिव जी को मानते हैं। लेकिन जैसे कहेंगे हम भी शिव जी को मानते हैं तो मन में क्या, कौन सा स्वरूप आता है? क्योंकि एक है वो जो है जैसा है, और एक है फिर उसके हमने जो बहुत सारे स्वरूप बनाए। तो एक है आप कौन हैं और कैसे हैं आपको जानना, और फिर एक है आपको लेकर अगर किसी ने कोई स्कल्पचर भी बना दिया, किसी ने कोई पेंटिंग भी बना दी, किसी ने आपका कैरिकेचर बना दिया, किसी ने आपके रोल को लेकर और आपकी एक्टिविटी को लेकर किसी ने एक ड्रामा भी क्रिएट किया, किसी ने एक स्टोरी भी क्रिएट की, किसी ने एक मूवी भी क्रिएट की, बहुत सारी चीजें हो गई। और कई बार ये हो सकता है कि मैं आपको ना जानू, लेकिन आपने जो किया और आपका जो रूप है उसको लेकर जो बाकी सारी चीजें बनी, चाहे वो कोई मूर्ति बनी, पिक्चर बनी, पेंटिंग बनी, या फिर कोई बातें बनी इस तरह से, मैं उनको सबको स्टडी कर लूं या उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दूं। और वो सारी जो बातें थी वो बातें तो आपके बारे में ही कर रहे थे, है ना, और वो जो रूप भी दिखा रहे थे उसमें, पिक्चर भी जो दिखा रहे थे वो भी आपके सिम्बॉलिक की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि मैं उस पेंटिंग से जुड़ गई, मैं उस मूर्ति से जुड़ गई, एंड मैं आई कुड हैव अ ब्यूटिफुल टाइम जस्ट उस मूर्ति के साथ कनेक्ट होना, उससे बातें करना, उसको ही सब कुछ अपना मानना, उसके साथ अपना सब कुछ शेयर करना, और उस कैरेक्टर को लेकर जो बहुत सारी कहानियां बनी उसको स्टडी करना,
उसके साथ सिर्फ बहुत प्रतिमा नहीं होती है, बहुत कुछ और जो
बहुत कुछ उसके साथ बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं उन सबको सीखने लगी, स्टडी करने लगी, कनेक्ट भी करने लगी, याद भी करने लगी, लेकिन उन सबके साथ करने लगी, इस सब में सिर्फ एक छूट गया, एंड दैट वॉज यू द एक्चुअल एंटिटी। See, one is you, a living being. एंड वन इज योर पोर्ट्रेट, योर स्कल्पचर, योर पेंटिंग, योर स्टोरी. दो अलग अलग
यू कनेक्ट विद देम रादर देन
लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हमारे इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं या फिल्म स्टार्स हैं या जो भी सेलिब्रिटीज हैं, कोई जगह है जहां उनके नाम के मंदिर बने हैं, ठीक है, कोई जगह है जहां उनके एग्जैक्ट रूप के वैक्स मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है. तो अब जब हम उस म्यूजियम में जाते हैं जहां उस कैरेक्टर का वैक्स मॉडल बना हुआ है, तो जब हम उस म्यूजियम में जाते हैं उसका वैक्स मॉडल है विच लुक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द एक्चुअल एंटिटी. फिर वहां पर एक पूरा प्लाकार्ड है जिसपे उनके बारे में एक पूरा उनका बायोडेटा, वो क्या है, कौन है, हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उस हस्ती के बारे में सब कुछ पता चलता है. फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ वहां मूवी भी है या स्टोरी भी है, हम उसको देखते हैं, हम उस हस्ती के बारे में जानते हैं. अब सपोज लेट मी टेक एनी वन फिल्म स्टार एंड मैं उस म्यूजियम में जाऊं, उनका मॉडल देखूं, उनकी बायोडेटा पढ़ू, उनकी स्टोरी के बारे में सुनू, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया उसका भी वहां पूरी एक पड़ी होती है मटेरियल, उसको भी स्टडी कर लू, सब कुछ किया. तो मैंने कहा मैंने इनके रूप को भी देखा, इनका क्या स्वरूप है उसको देखा, इनके बारे में जाना, सब कुछ कर लिया. सो लेट्स से आई हैव कम्प्लीट नॉलेज, इवन इफ यू अज्यूम कि आई हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट दैट वन पर्सन, लेकिन मेरा उस व्यक्ति के साथ जो वो फिल्म स्टार है या जो वो सेलिब्रिटी है, मैं उनके साथ अभी नहीं मिली, उनका फॉर्म देखा. लेट्स से इफ आई टेक द फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, ओके लेट्स से आई नेवर मेट हिम, तो ना उनसे कभी मिले, ना जान पहचान हुई, ना उनसे कोई रिश्ता जुड़ा, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके बारे में सब कुछ पता है. और इस म्यूजियम में जाके उनका आइडेंटिकल फॉर्म देख लिया, कैन आई से आई नो हिम, कैन आई से आई कनेक्ट टू हिम, कैन आई से दैट आई हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद हिम, नो आई कांट से दैट, आई कैन जस्ट से मुझे मालूम है वो दिखते कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है और उन्होंने किया क्या क्या है अपने जीवन में. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उनको जानती हूं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेकिन परमात्मा को लेकर जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा बिलीफ सिस्टम बना था वो ये था कि उसको तो हम कभी भी वैसे भी नहीं पा सकते, उसको नहीं जान सकते, उसके साथ एक ऐसे डायरेक्ट पर्सनल रिश्ता जुड़े ये तो कॉन्सेप्ट में भी नहीं था, यू नो कॉन्सेप्ट में भी नहीं था. तो लेकिन जब हमने उसका फॉर्म, उसका कोई सिंबल और फिर उसकी ज्ञान की बातें और उसने जो जो कर्तव्य किया वो सारी बातें जब स्टडी की और उसको सिंबॉलिक रूप में देखा, हमने कहा यही वो है, यू नो दिस इज दिस, बिकॉज दिस इज वेयर माई पावर एंड्स. मैं भगवान को इतना ही जान सकती हूँ, उसका जो स्वरूप मुझे किसी ने बताया और सिखाया, जो एक्चुअल एंटिटी है उसको तो हमारा रिश्ता उसके साथ तो नहीं जुड़ा. अब हम जो कह रहे हैं कि हम भगवान को मानते हैं या मैं शिव जी को मानता हूं या परमात्मा को मानता हूं, देन आई नीड टू जस्ट स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, मैं किसको मानता हूं और किसको जानता हूं, वो एंटिटी
सुन ली चाहे मैंने कोई भी बात. तो दैट इज वाई आई फील कि हियर ही कम्स एंड आंसर्स मी और गिव्स मी.
ओके नाउ लेट्स सी कि परमात्मा एक शक्ति है, ठीक है, कहाँ है क्या है वो अभी हमें नहीं मालूम है, वो लेकिन एक शक्ति है, हम सब उसके बच्चे हैं, हम उसको याद कर रहे हैं, ठीक है. वो शक्ति मैटर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो जहां भी है उसको हमारी थॉट पहुंचती है, ठीक है. अब लेट्स से वो शक्ति कहीं और है और मैं इस ऑब्जेक्ट को परमात्मा मान के इसको मैं बहुत प्यार से याद करूं एंड अपनी बात कहूं एंड अपनी प्रॉब्लम कहूं, अगर मेरी वो याद इतनी स्ट्रांग है और मुझे परमात्मा ने हेल्प करनी है, ओके, या मुझे कोई पावर देनी है या ब्लेसिंग देनी है या कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, तो वो परमात्मा मुझे टच करके कर देगा, ठीक है. लेकिन वो कौन मुझे टच करके करेगा, दिस आई नीड टू अंडरस्टैंड. वो परमात्मा मुझे टच करके करेगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे टच करके नहीं करेगा.
लेकिन ये ऑब्जेक्ट मेरा माध्यम बन जाता है.
ये ऑब्जेक्ट मेरा माध्यम नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये ऑब्जेक्ट के सामने बैठकर मैंने वो फीलिंग क्रिएट की.
यू नो
मैं घर बैठ के भी वो कर सकती हूँ,
पर वो होते नहीं ना हमसे,
क्योंकि हमने अभी तक इतने अवेकनिंग में भी बार बार देखा कि आज दिन तक हम यही समझते आए हैं हमारी फीलिंग्स कोई ना कोई स्टिमुलस से ही क्रिएट होती है, चाहे हमारी खुशी है, चाहे हमारा दर्द है, प्यार है, हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए था, कोई पोजेशन चाहिए था, कोई लोग चाहिए थे, वो स्टिमुलस आता था और हम वो फीलिंग क्रिएट करते थे। लेकिन अब तक इग्नोरेंट थे तो हम कहते थे उनकी वजह से वो फीलिंग क्रिएट हुई। अब हमें ये क्लैरिटी आ गई, वो स्टिमुलस था और उस स्टिमुलस के सामने मैंने चूज किया यही फीलिंग क्रिएट करना। अब वो ही सिंबल हरेक के अंदर तो सेम फीलिंग नहीं क्रिएट करता, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई भावना ना हो, कोई श्रद्धा ना हो, कोई बिलीफ ना हो, मैं 24 आवर्स बैठ सकती हूँ उसके सामने विदाउट फीलिंग एनीथिंग।
तभी तो वो कहते हैं कि मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता
हूँ, विच मीन्स मैं इस सिंबल के सामने हूँ या इस मूर्ति के सामने हूँ या इस रूप के सामने हूँ, तब मैं वो फीलिंग्स क्रिएट करता हूँ। अगर वो ऑब्जेक्ट हमें वो फीलिंग दे पाती तो वन ऑब्जेक्ट विल गिव द सेम फीलिंग इन एवरीबडी एल्स। दिस हैज टू बी, एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज सेड कि अगर स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता था तो एक स्टिम्यूलस हरेक के अंदर सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, चाहे वो कोई भी स्टिम्यूलस हो। एक फूल है, आप गार्डन में चलते हुए जा रहे हैं, किसी को वो फूल देखकर ओहो इतनी खुशी हो जाती है, और कोई तो उसके सामने से ऐसे ही वॉक पास्ट करेगा, ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन समरी विल से That flower made me feel very nice. You know, language भी ये that वो फूल से मुझे बहुत अच्छा, flower didn't do anything. उस फूल ने कुछ भी नहीं किया, उस फूल को आपने stimulus use किया और बहुत अच्छी feelings create की। किसी और ने उसको देखा और ignore कर दिया, और कोई और ने आकर तो तोड़कर शायद उसको अपने पैर के नीचे कुचल कर आगे चला गया, object same था। तो ये हमें समझ में आ जाए ना कि एक ही stimulus अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो ये हम पहले अपने आप से क्लियर हो जाएं, ये रिस्पॉन्स मेरा है, यू नो। अगर वो स्टिम्यूलस कोई लिविंग एनर्जी है, जैसे एक है स्टिम्यूलस कोई ऑब्जेक्ट, एक है स्टिम्यूलस कोई प्रॉपर्टी, जैसे कार है, एक ही गाड़ी देखकर किसी को यू नो somebody can get so excited और किसी के अंदर उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो उस केस में वो जो स्टिम्यूलस है वो जड़ है, तो स्टिम्यूलस की अपनी कोई एनर्जी नहीं है। तो जो रिस्पॉन्ड करने वाला है टोटल 100% जो एनर्जी है वो उसकी है, यूजिंग द स्टिम्यूलस एज द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। अब दूसरा एक जो स्टिम्यूलस होता है वो जब है कि एक लिविंग पर्सन है, यू नो जब एक और एनर्जी है आपके सामने, तो उसमें भी सपोज आप एक व्यक्ति है, आप स्टिम्यूलस हैं, आप एक बात कहते हैं, लेकिन आपकी ही बात सुनकर कोई उसको इग्नोर कर देगा, कोई बहुत हर्ट हो जाएगा, कोई उसको बहुत पॉजिटिव रूप से ले लेगा, उस केस में भी हम कहेंगे स्टिम्यूलस एक ही था, हमने फील भी एक ही थी, लेकिन हम सब ने रिएक्ट अलग अलग किया, तो उसमें भी रिएक्शन हमारा ही था, लेकिन उस रिएक्शन में जो हमें स्टिम्यूलस मिल रहा था वो फिर भी एक वाइब्रेशन थी, तो हमने उस वाइब्रेशन को लिया और फिर हमने उसके साथ किया कि हमने कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करनी थी। लेकिन जिस केस में स्टिम्यूलस जड़ होता है तो उस केस में तो स्टिम्यूलस की कोई वाइब्रेशन ही नहीं है। तो इसी तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी बातें हमने सुनी, हमने अपने अपने रूप से परमात्मा को जिस तरह से भी समझा जाना, और हमने फिर अलग अलग सिंबल्स को या अलग अलग रूप में अलग अलग मूर्तियों में हमने वो भावनाएं क्रिएट करनी शुरू की, लेकिन अभी भी हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए सामने जो हमारे है वो अभी जड़ है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। तो मैं जिसके साथ रिश्ता क्रिएट कर रही हूं, चाहे वो शिवलिंग है, चाहे वो कोई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, चाहे वो हमारे धर्म स्थापकों के चित्र हैं, चाहे वो कोई भी रूप है, वो जड़ है। धर्म स्थापक भी जब इस सृष्टि पर थे, जब वो थे इस सृष्टि पर और जिन लोगों का उनके साथ रिश्ता जुड़ा होगा, दे वुड हैव हैड एन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि वो भी लिविंग एंटिटी है, हम भी लिविंग है, हमारा एक रिश्ता था एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन आज वो नहीं है, आज उनकी सिर्फ चित्र है, आज उनकी सिर्फ मूर्ति है, हम उसको यूज करके या उस स्टिम्यूलस को लेकर हम भावनाएं क्रिएट करते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, कैन आई गो इवन अबव दिस, कि एक है परमात्मा का सिंबल, परमात्मा का रूप, और एक है एक्चुअल परमात्मा। क्या दोनों चीजों में फर्क होगा? एक है देवी देवताएं जिनकी मूर्ति है, और एक है कि वो देवी देवताएं लिटरली अगर हमारे सामने आ जाएं, तो क्या दोनों चीजों में फर्क नहीं होगा?
पर वही तो हम ढूंढ रहे होते हैं हमेशा, हम कहते हैं साक्षात्कार हुआ। सी बिकॉज वी आर एक्चुअली लुकिंग, वही हमारे लिए
हमें क्यों साक्षात्कार ढूंढ रहे हैं? क्यों हम खुश नहीं हैं सिर्फ उस मूर्ति को याद करके? क्यों हम साक्षात्कार ढूंढ रहे हैं? क्योंकि साक्षात्कार में हम मूर्ति से एक स्टेप ऊपर जाएंगे। ये मूर्ति थी और ये था जिस मूर्ति को लेकर हम जिस देवी देवता को याद कर रहे थे उसका एक विजन, यू नो। लेकिन वो जब विजन हमारे सामने आता है वो एक लिविंग रूप में आता है, वो एक जड़ रूप में नहीं आता है, वो एक लिविंग रूप में आता है। अब उसके भी बियॉन्ड एक थर्ड स्टेप पे जाते हैं, उस लिविंग एनर्जी के साथ एक कंटिन्यूस रिश्ता, नॉट सिर्फ साक्षात्कार एक कुछ सेकेंड्स का या एक मिनट का, लेकिन एक डायरेक्ट पर्सनल रिश्ता। तो तीनों चीजों में फर्क है या इज इट ऑल द सेम थिंग? वी नीड टू आस्क आर सेल्फ। इवन परमात्मा नहीं ले, हम देवी देवताओं को ले। एक है मूर्ति, एक है उस देवी देवता का साक्षात्कार विजन, और तीसरा है वो देवी देवता लिविंग एंटिटी अगर हो आपके सामने और उसके साथ आपका एक पर्सनल रिश्ता हो। तीनों में फर्क नहीं है?
पर वही तो वो कहते हैं ना फिर कि अब देखो परमात्मा या देवी देवताओं के साथ भी या जो भी जिन्हें भी हम भगवान मानते हैं या जो भी अपने से उस एनर्जी को मानते हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता बिकॉज कॉन्वर्सेशन ऐसे वाली तो इट्स नॉट, यू नो, साक्षात्कार भी एक विजुअल होता है।
वो अभी है नहीं ना, ये हमें क्लैरिटी थी कि वो देवी देवताएं अभी इस सृष्टि पर नहीं है।
लेकिन वो सपने में आते हैं, फिर वो जो वो कॉन्वर्सेशन है, सी दैट इज व्हाट दे फील, दिस इज अ लिविंग रिलेशनशिप आई हैव विद हिम बिकॉज हुएवर, कि मैं बात करूं, मैं उनसे अपनी प्रार्थना करता हूं, सपने में आकर या रात को सोते वक्त वो मुझे मेरा जवाब देते हैं या मेरे को आगे जीवन कैसे जीना है।
वेरी गुड। आंसर कौन देकर जाता है? आंसर कोई और देकर जाता है। जिसके सामने आप मंदिर में खड़े थे उसने नहीं आंसर दिया ना,
उस मूर्ति ने नहीं दिया।
दिस देन फिर हम देखेंगे आंसर कैसे मिलता है और आंसर कौन देकर जाता है। एटलीस्ट हम दोनों चीजों को एक सेपरेट तो करें ना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज धर्म स्थापक सृष्टि पर आए, फिर इतने सारे महात्माएं सृष्टि पर आए, संत आत्माएं सृष्टि पर आए, बहुत सारे लोग थे जिनका उनके साथ पर्सनल रिश्ता था। सपोज आज हम शिरडी साई बाबा को याद करते हैं, कितने लोग याद करते हैं, कितनी प्यार से भावना से याद करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका साई बाबा से पर्सनल एक रिश्ता था? उनके रिश्ते में और हमारी आज याद में फर्क है या नहीं फर्क है? दिस इज द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। उन लोगों के लिए जो उस समय सृष्टि पर उस पीरियड में रहकर गए, उस समय उनके लिए जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, साई बाबा एंड सारे जो सृष्टि पर आए हैं, दे हैड अ पर्सनल वन टू वन रिलेशनशिप विद द लिविंग एनर्जी। वो चैतन्य शक्ति उनके साथ थी, उनको वो फील करते थे, उनकी वाइब्रेशंस को वो कैच करते थे, फिर उनसे ज्ञान भी लेते थे, पालना भी लेते थे। और आज उनका क्या है? आज उनके चित्र हैं,
उनकी याद,
आज उनकी मूर्तियां हैं, आज उनकी बातें जो कही हुई हैं वो हमारे साथ है, और आज उनकी याद है, आज वो लिविंग रूप में हमारे साथ नहीं। दिस वी नीड टू सेपरेट। एंड सेम विद गॉड। अब परमात्मा को लेते हैं कि परमात्मा जो है, अलग अलग उसके हमने रूप बनाए, चित्र बनाए, सिंबल्स बनाए, लेकिन अब वो समय है कि वो जो एक्चुअल है, एक्चुअल उसका सिंबल नहीं, वो जो एनर्जी है, जो वो कॉन्शियंट बीइंग है, वो जो लिविंग एंटिटी है, उसके साथ डायरेक्ट उसको फील करना, उसकी बात सुनना, उसकी कही हुई बात जो कहीं लिखी थी उसको पढ़ना नहीं, डायरेक्ट उसकी बात सुनना, उसको फील करना। और क्योंकि वो एक्चुअल है तो उसके साथ एक पर्सनल डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना, ये दो बातों में बहुत फर्क है। सो वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड कि दैट इज पॉसिबल नाउ। अभी तक हम सोचते थे कि वो पॉसिबल
नहीं
है, कि सपोज आपसे मिलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपकी बातों को लेकर ही खुश हो जाऊं या मैं आपकी फोटो को ही देखकर खुश हो जाऊं, क्योंकि ये मेरे अंदर फिक्स था कि आपसे मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सडनली टुडे आई रियलाइज कि आपसे मिलना पॉसिबल है तो देन मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा डू आई वॉन्ट टू मीट यू, कि जिसको मैंने याद किया, जिसको मैंने पुकारा, जिसको मेरी इच्छा थी कि मैं उसको कभी मिलूं, जिसकी बात को मैंने सुना, जिसने मुझे समय प्रति समय मुझे उससे बहुत प्राप्ति भी हुई व्हाट आई फील, अगर वो सचमुच में आ गया है एंड यू नो समवन इज शेयरिंग दैट वो आ गया है, डू आई वॉन्ट टू मीट दैट लिविंग एंटिटी, दिस आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू आस्क आवरसेल्व्स, क्योंकि अब वो संभव है। तो अगर आप परमात्मा को मानते हैं लेकिन अब टाइम है कि वो जो है जैसा है उसको जानना पहचानना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी बात को उससे ही सुनना और फिर उसके साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता जोड़ना, दैट्स द टाइम दैट वी आर क्रॉसिंग राइट नाउ।
दैट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि हम समय के किस मोड़ पर खड़े हैं, तो सचिवानी ही चलेगा पूरा, क्योंकि धीरे 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 हम जहां जहां रुक रहे थे उससे आगे बढ़ने के प्रोसेस में है। थैंक यू सो मच शांति। अब ये समझने की देखने की बात है, क्योंकि आज हमने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, जब भी किसी भी हम इस तरह की पूजा करने की जगह पर जाते हैं या अपने इष्ट से इष्ट की बात होती है या जिसे हम ईश्वर मानते हैं उसके पास जाते हैं, अभी तक जहां जहां मैं सोच रही थी कि वो है, वो मेरी ही सोच थी, मेरी भावना थी, सचमुच मुझे जवाब भी मिल रहे थे। लेकिन ये देखने की बात है, आज अगर ये बात है कि वो परमात्मा जो सबसे ऊपर एक है, जो हर धर्म कहता है, वो अगर आया हुआ है तो कौन है और मेरा उसके साथ रिश्ता और कनेक्शन कैसे हो सकता है। आने वाली कड़ियों पर इसी पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, फिलहाल आपसे विदा लेंगे, लेकिन अगर आपके मन में कोई बात है आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।